awakening to a new way of living.
Very good evening and Om Shanti. I welcome you all in fifth session of e-conference on enhancing quality of life. Quantity of life ke saath, quality of life is very important. Today, we have a distinguished guest with us, Mr. S. K. Rungtaji, ex-chairman of steel giant, SAIL, Steel Authority of India Limited. We had some nice time during one of the conferences of SIU at Mount Abu, which you had inaugurated. We will like to listen to your business acumen when there is chaos and crisis all around. Requesting Mr. Rungtaji to express his heartfelt good wishes.
Namaskar. At the outset, I would like to thank scientists and engineering wing of Brahma Kumaris who have given me this opportunity to speak to you, who are participating in this conference on enhancing quality of life. This e-conference is taking place in the backdrop of COVID-19, which has disrupted our lives, including a serious challenge before the trade and industry and businesses. I believe that a number of practicing managers, leaders of business and industry are also participating in this conference. I would like to share few of my thoughts in this regard relating to the unprecedented situation which is being faced by all of us, especially those who are in the business and industry. I think first and foremost task before all of us who are in any enterprise is to maintain our calm and not to panic. Truly, it is a very, very difficult situation, but it is our duty to ensure that morale of our employees and workforce is maintained. That is the foremost for our revival of business. Secondly, any crisis also throws a lot of opportunities, and this is more true for this current situation. A number of innovative things which will be thrown up by our workforce, by our human resource, can be tried out now, which in the past we have not done for the fear of causing any disruption. In fact, innovation is not necessarily the new product or new services, but doing things differently. And I am sure that all businesses are discovering as to how they can do things in a different manner, in more efficient and more productive as well as more cost-effective way. Thirdly, it is very, very important that we maintain our relationship and strengthen them with our stakeholders in the supply chain. In fact, in spite of all the problems which we may be facing, I think this is very important that we handhold our small suppliers, handhold our customers who may be in distress. At least what is important is that even if we are not able to fulfill our contractual obligations for any force majeure conditions, we do have a very good communication with them, explaining the reasons and as well as assuring them that when things become normal, they will get our due priority. I suppose through this process, through good communication, we can maintain the best relations with our stakeholders, which will give us the long-term advantage. And lastly, one more small point relating to the cost. I suppose every enterprise has got a lot of redundancy, lot of costs, which can be optimized. This is high time that we look at each aspect of our costs and optimize them for long-term advantage, so that even after COVID situation normalizes, the benefit of the cost optimization accrues for a long time for our businesses, and that will serve to be blessing in disguise. I am glad that the topic of the conference is enhancing quality of life, and when I was heading Steel Authority of India Limited, with the help of Brahma Kumaris at Lodhi Road, we had conducted several workshops for our executives, which were well received, and it did really help in so many aspects, including managerial as well as stress management and many other aspects. So I wish all of you a great time ahead in this e-conference, and I am sure that we get back to our business with renewed confidence that we have to tide over this with some benefits accruing out of the whole situation, which we must harness. Thank you very much.
Thank you, Divine Brother Rungtaji, for your deep insights and best wishes. We all cherish joy, but somewhere or other, we are accustomed to experience the limited joy or pleasure by depending on external, be it a man or materials. Let's discover a new approach today. Let's experience happiness minus hankering, bliss without bondage. Sister Prachi from Bhilai is an acclaimed expert on this. Raj Yoga for Journey to Joy. Though a technocrat, she has devoted her entire life for the upliftment of humanity through a variety of programs throughout the country for many segments of people, be it youth, managers, leaders, and so on. Sister Prachi from Bhilai.
Om Shanti. Good evening. ये इस इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस सेशन है. राजयोगा फॉर जर्नी टू जॉय. आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, आप सब अपने कार्य क्षेत्र के हर कार्य को भूलकर इस नुमा शाम के समय बैठे हैं एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस के लिए. इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे बैठे जैसे एकदम अकेले बैठे हैं, तो सिर्फ सिर्फ अपने लिए. मूल्यवान है ये समय जो अपने लिए निकाला है. सब बातों को भूलकर, हल्के होकर, अलर्ट, एकाग्र पर इजी होकर बैठेंगे और हम चलेंगे एक बहुत सुंदर जर्नी की ओर. जर्नी टूवर्ड्स माय इनर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड फुल ऑफ पीस एंड जॉय. आज के समय की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है. टुडे एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड प्रिवेलिंग सोरो, ईच वन इज सर्चिंग फॉर पीस एंड जॉय. ऐसा नहीं है कि खुशी या शांति कभी मिली ही नहीं, मिलती है, पर जिस क्षण खुशी मिलती है अगले क्षण भय भी होता है. कई हर बार की तरह ये खुशी गुम तो नहीं हो जाएगी. या कभी परिवार में खुशी आती है तो साथ साथ ऑफिस का तनाव या भविष्य का भय भी साथ लिए होती है. एक एक दिन इसी खुशी और शांति की तलाश में बीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि आखिर यही तो खुराक है मेरे जीवन की. और जब नहीं मिलती है तो हर पल कमजोर होते जा रहे हैं अंदर से, और बाहर से अपनी ताकत दिखाते हैं, कभी अहम के रूप में तो कभी क्रोध के रूप में. पर सच पूछे तो ये तो मेरे अंदर के कमजोरी का ही लक्षण है। आज हम बात करेंगे और चलेंगे ऐसी खुशी की ओर, ऐसी खुशी जो ताकत भर देती है, हर भय और तनाव को दूर भगा देने की, ऐसी खुशी जो अंदर की है, सच्ची है, बहुत शक्तिशाली है। तो चले। और वैसे भी आज के समय में तो अपनी खुशी के लिए हम दूसरों पर तो क्या, अपने ही किसी प्रयास की सफलता पर भी निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आज हमें प्रभावित करने वाले हर एक एक्सटर्नल फैक्टर्स बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। दे आर ऑल आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो अपनी खुशी और शक्ति मुझे अपने अंदर ही तय करनी होगी और हमेशा हमेशा के लिए सीख लेना होगा इस कला को। और इसकी बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ और सरल विधि है राजयोग। राजयोग एक ऐसा योग जो मुझे अपनी सारी अनुभूतियों का स्वयं ही मालिक बना देता है, राजा बना देता है। और इसका पहला चरण है अंतर्मुखता। कार्य व्यवहार में आते, अनेकों के संपर्क में आते, डिटैच्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। आज घरों की स्थिति है, हम सामने वाले से कह रहे होते हैं तुम मुझसे शांति से बात करो, और सामने से क्या जवाब आता है, पहले तुम शांति से बात करो। वास्तव में ये स्थिति क्या है, हम सामने वाले से शांति मांग रहे हैं और वो मुझसे शांति की अपेक्षा कर रहे हैं। और वंडरफुल बात क्या होती है कि दोनों के पास ही शांति नहीं है, और जब एक दूसरे से नहीं मिलती है तो वहां एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं। अब आप बताइए, इसमें दोष किसका था? क्या उनका जो मुझे शांति नहीं दे पा रहे हैं, या मेरा जो मैं ऐसे से शांति मांग रही हूं जिनके पास है ही नहीं? बताइए दोष किसका है? मेरा ना, तो मैं क्यों मांगू? मांगने के लिए खिड़की खोलू ही नहीं तो धूल अंदर आएगी ही नहीं। तो अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, अभी कुछ पल के लिए इसे रियलाइज करते हैं। ऐसे बैठे विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं। व्यवहार में आते हुए आप अंतर्मुखी हैं और अंदर से अवेयर है कि इनसे मुझे खुशी, शांति या शक्ति लेना नहीं है, ये सब खाली हो चुके हैं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। मुझे खुद ही अपने अंदर की खुशी को संजोना है, और इतना संजोना है जो मैं इन सब को भी खुशी दे सकूं। यही तो मेरा कर्तव्य है, इसीलिए तो ईश्वर ने मुझे इन सब के बीच भेजा है। मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी प्रभु पिता को मैं बड़ी शान से अपने जीवन का हिसाब दे सकूंगी। इसी सुंदर एहसास को इस गीत के साथ कुछ पल जिए।
अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला,
तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
अब अंतर्मुखी हो गए, अब आगे जिस प्रकार शास्त्रीय विधानों में और पौराणिक विधियों में वर्णित है कि अगर किसी उत्सव के दिन भी सच्ची खुशी तक पहुंचना है तो पहले सफाई करनी होगी, फिर नवीनता को धारण करना होगा और फिर ईश्वर के आह्वान से जी भर खुशियां हम मना सकते हैं। तीन स्टेप्स है, पहला है सफाई, दूसरा नवीनता को धारण करना और तीसरा ईश्वर का आह्वान, फिर खुशियां ही खुशियां। ठीक यही चीज हमारे जीवन के भी सच्ची खुशी के एहसास करने की विधि के लिए भी लागू होता है। पहली है सफाई, अंदर की मुझे अपनी सारी पुरानी अशुद्ध भावनाओं और फीलिंग्स को समाप्त करना होगा। उसके बिना खुशी के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। टेम्परेरी भी आप देखेंगे, यदि हम किसी होटल में भी खुशी मनाने जाते हैं तो निश्चित है कोई गंदे या अस्वच्छ स्थान पर खुशी की तो सोचते भी नहीं है, हम तो साफ स्थान ढूंढते हैं ना। मुझे स्वच्छ करना होगा अपनी अंदर की दुनिया को। आप सोचते होंगे आसान नहीं है, पर मुश्किल भी तो नहीं है। आज विश्व के हजारों लाखों लोग परमात्मा द्वारा सिखाए इस राज्यों की विधि से अपनी स्वच्छ भावनाओं के शुद्ध वायु में पावन खुशी का एहसास कर रहे हैं। आप भी शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम क्यों नहीं अपने अंदर की भावनाओं को साफ कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं? पहला, क्या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? शायद हाँ। सोचते हैं सामने वाला पहले अपनी इन पुरानी आदतों को, इन नेगेटिव भावनाओं को ये खत्म करे तो मैं अपने आप को बदलू। परंतु जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो क्या पड़ोसी का इंतजार करते हैं कि पहले वो अपने घर को साफ करे और फिर मैं अपने घर को? नहीं ना, वो करे ना करे, मैं अगर अपने घर को स्वच्छ करती हूं तो उसका सुकून मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही कोई बदले ना बदले, मुझे अपनी अंदर की दुनिया को बिल्कुल साफ कर देना है, ऐसा साफ जो पुराने का नाम निशान ही न रहे। स्वराज्य का मीन्स अंतर्मुखी हो मेरी नजर मुझ पर, जिस प्रकार अर्जुन की उस एक मछली की आंख पर ही नजर रही, अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। और तब उस महासंग्राम के समय ईश्वर के दिए उस ज्ञान को वो अपने अंदर समा सका और विजयी बना। ठीक उसी प्रकार आज इस विपदा के समय भी ईश्वर मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं, तुम भी हे अर्जुन बनो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और विजय तुम्हारी ही निश्चित होगी। तो पहली बात हुई कि मुझे किसी का इंतजार नहीं करना है। दूसरा, क्यों मैं साफ नहीं कर पा रही हूं अपनी इन पुरानी भावनाओं को? क्या मैं सोचती हूं कि ये मेरे लिए काम की नहीं है? अब तो हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे बदलने के लिए। परंतु दूसरी बात, कई बार हम पुरानी बातों को इतना पकड़कर बैठते हैं और फिर कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूं। परंतु सच कहें तो माफी की तो उनको जरूरत ही नहीं है। इस कर्म क्षेत्र में कर्म के अनुसार हरेक प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ चुका होता है, और हम उन्हीं पुरानी नफरत के बंधनों में अपने आप को बांधे रखते हैं और अपनी खुशी को बदलकर दुख और अशांति में अपने जीवन को घेर लेते हैं। वास्तव में माफ करना दूसरों को नहीं है, मुझे खुद पर रहम करना है। माफी अर्थात दूसरों के प्रति नफरत को छोड़ देने का मेरा अपना सचेत अवस्था में किया गया निर्णय, ये है माफी। फिर से रिपीट करती हूं, माफी अर्थात दूसरों के प्रति नफरत को छोड़ देने का मेरा अपना सचेत अवस्था में लिया गया निर्णय। वैसे भी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जीवन तो सीखने का नाम है, सीखते ही तो चलना है। और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कोई भी जिम्मेदार है ही नहीं। मेरे साथ जो होना है उसके कर्मों की कहानी तो मैंने पहले ही लिख ली है, ये तो दूसरे सभी उसमें अनजाने में निमित्त बन जाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई घटना होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई होनी को कोई टाल नहीं सकता था, कारण कुछ भी बन जाता है पर वो होना तो निश्चित था ना। ठीक ऐसे ही मेरे साथ भी वो चीज मैंने अपने लिए लिख रखी थी, कोई ना कोई उसमें कारण बन जाता है, तो उसके लिए नफरत क्यों? मुझे अपने पर ध्यान देना है, जीवन सीखने का नाम है, हर घड़ी मुझे सीखते चलना है, सीखते चलना है। तो राजयोग अर्थात अंतर्मुखी हो, एकांत में अपने साथ बैठते हैं, अपने अंदर की दुनिया को मैं एकांत में देखती हूं, कहां कहां मैंने क्या क्या छिपा रखा है, बुरा गंदा नेगेटिव खराब चीजें, जो ही बार बार बाहर निकलता है मेरे अपने रिएक्शंस के रूप में। छोटी छोटी चीजें होती है वो अंदर, लेकिन बहुत समय से पड़े पड़े बड़ा घाव कर देती है, जिसके कारण एक बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में वो चीजें बाहर निकलती है। देखो अंदर, कहीं ना कहीं ये अंधकार में छिपे ये छोटे छोटे कीटाणु, उसमें इस ज्ञान की रोशनी से उसमें उजाला कर दो, तो स्वतः ही धीरे धीरे वो सारे नेगेटिविटी, वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पर अंदर बैठकर अपने साथ बात करना, ज्ञान की रोशनी स्वयं में भरना, ये राजयोग का पहला स्टेप है, वेयर आई क्लीन माई सेल्फ। जैसे जैसे अंदर की क्लीनिंग होती है, अंदर पॉजिटिव और शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे मेरे मन की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ते जाती है। याद रखें, अंदर की अशुद्धि कभी आपके मन को स्थिर होने नहीं देगी। अब इस एकाग्रता और स्थिरता के साथ अगला स्टेप है नवीनता को धारण करना। अपनी नई पहचान हमें प्राप्त होती है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं? तो निश्चित आप अपना नाम बताएंगे। पर फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ कि ये जो आपने अपना नाम बताया, सारे दिन में देखिए आप अपने नाम को खुद कितने बार इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना, ये तो दूसरे इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तव में ये नाम, ये पद, ये डिग्री, ये सब तो दूसरों के लिए थी, मुझे पहचानने के लिए। परंतु सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, मेरे लिए मेरी पहचान क्या है? आज तक की जो भी पहचान थी, ये दूसरों के लिए थी, मुझे पहचानने के लिए। पर मेरे लिए मेरी पहचान क्या? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी शक्तिशाली स्थिति निर्मित होती है। याद रखिए, नेगेटिव को क्लीन किया, अंदर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए, बीमारी खत्म की, तो मन स्थिर हुआ, एकाग्र हुआ। लेकिन जब अपनी नवीन सत्य स्मृति धारण करते हैं, तब आती है शक्ति। मेरे लिए मेरी पहचान क्या है? Who am I? भिलाई स्टील प्लांट के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बहुत सुंदर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम अटेंड करने गए हुए थे, तभी उस समय उनके ऊपर बहुत सारी परिस्थितियां और वे बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत बड़े पद पर, बहुत सारी जिम्मेवारी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, और वहीं घर पर दो बच्चे, उसमें से एक पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो दूसरा गलत संग में फंसा हुआ। वो सोच रहे थे कि आखिर हर तरफ से ना मेरा खराब होगा और ना मैं अपने कार्य पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो पा रहा हूँ, घर की वो समस्याएं मुझे विचलित कर रही है, हर तरफ से स्ट्रेस में थे। और जब वो हेडक्वार्टर आए तो दादी से मिलना हुआ, तो दादी से उन्होंने एक सवाल पूछा, कहा, दादी आप बताओ मैं क्या हूं, कौन हूं और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। दादी ने बहुत प्यार से मेरे सवालों को सुना और एक ही जवाब दिया, यू आर अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड। उन्होंने सुनाया मानो दादी के मुख से वो शब्द, वो प्योरिटी मेरे जीवन में भर गई और बस उसी को ही मैंने अपनी पहचान बना ली। और मुझे समझ आ गया कि ये शरीर से तो मैं केवल एक रोल प्ले कर रहा हूं और हर टास्क जो मेरे सामने है, चैलेंजेस जो मेरे सामने है, वो एक पेपर है जिसमें मुझे पास होकर दिखाना है। इस शरीर से पार्ट बचाने वाली मैं शक्ति, चैतन्य आत्मा, आई एम अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड। आगे उन्होंने सुनाया कि अब उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी परिस्थितियां आती थी वो अपने रोल के आधार पर बनाई हुई पहचान से बहुत दिमाग लगाते थे और अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते थे। मानो बाहर चल रही कहानी में अपने अंदर ही अंदर एक दूसरी कहानी गढ़ लेते थे और सारी उनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती थी। और उन्होंने सुनाया कि अब मेरी एक पहचान, आई एम अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड, सब कुछ बदल दिया इसने। अब मैं कुछ नहीं सोचता, जैसे ही अपनी इस पहचान में स्थित होता अपनी प्योरिटी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड की शक्ति है मेरे पास, गॉड का साथ है मेरे पास, और फिर हर कार्य आसान हो जाता है। सच है, कोई भी सिचुएशन है वो बहुत बुद्धि लगाना नहीं मांगता। उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक गुण चाहिए और एक शक्ति चाहिए बस, और वो आती है अपनी सत्य पहचान से। तो अंदर की सफाई किया और अपनी इस सत्य पहचान की नवीन ड्रेस धारण किया। और तीसरी बात, ईश्वर का आह्वान। ये क्यों जरूरी है? ईश्वर का आह्वान माना कोई उनके सामने बैठकर ईश्वर से मांगना नहीं। अरे हम तो ईश्वर के पुत्र जब अपनी सत्य स्मृति में टिक गए तो मांगने की बात तो आती ही नहीं। ईश्वर का आह्वान माना मैं बुद्धि रूपी नेत्र से अपने ईश्वर पिता को देख रही हूं। उससे क्या होता है? देखिए, हमने अपने आप को पिछली पुरानी बातों से स्वच्छ तो कर लिया, लेकिन हर पल नई नई बातें सामने आ रही है। पुराने कपड़े साफ कर लिए, लेकिन नए आने वाली गंदगी से भी अपने कपड़े को सदा साफ बनाए रखो, उसके लिए चाहिए ईश्वरीय साथ। क्योंकि हमारे मन और बुद्धि जितना ईश्वर पिता को देखते रहते हैं, अर्थात हमारे मन के विचारों की तरंगे ईश्वर के साथ टिक जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतनी हाई हो जाती है, उसकी तरंगों में इतनी शक्ति हो जाती है कि फिर दुनिया की बातों की जो नेगेटिव तरंगे हैं उसका असर उसमें नहीं होता। हमें ये पता है कि एनर्जी फ्लोस फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। अगर हम ईश्वर के स्मृति में स्थित है, उसके साथ स्थित है, तो हमारा लेवल बहुत हाई होता है। ईश्वर की ऊंचाई के आगे दूसरी और कोई ऊंचाई नहीं। तो हमारी वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते हैं जो दूसरों तक फैलते हैं, पर दूसरों के नेगेटिव वाइब्रेशंस का हम पर कभी असर हो नहीं सकेगा। इसीलिए सदा सदा अपने आप को इस दुनिया में रहते नेगेटिविटी से फ्री रखना है, बचाए रखना है, उसके अंश मात्र प्रभाव से, उन वाइब्रेशंस के असर से बचाने के लिए ईश्वरीय याद मानो एक कवच का काम कर देती है। अतः राजयोग हमें सिखाता है उस ईश्वर पिता के साथ अपने बुद्धि योग का कनेक्शन जोड़ लेना, हर कार्य करते हुए इस योग को कर्म में शामिल करना है। इसलिए इसे कर्म योग भी कहा जाता है और कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम्। हर तरह की नेगेटिव सोच नेगेटिव तरंगों से सुरक्षित हर कार्य करते हुए मैं उचित निर्णय ले पाती हूँ और सहज ही अपने गुण और शक्तियों से जो करूंगी श्रेष्ठ करेंगे। कई बार फिर लोग कहते हैं कि कर्म करते ईश्वर को बुद्धि में रखना तो बहुत कठिन है। अरे हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं सुबह सुबह भी ईश्वर को याद करने तो काम और धंधा ही याद आता है, तो कार्य के समय ईश्वर को कैसे याद रख सकते हैं? पर हम आपसे पूछते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और कोई आपका फ्रेंड बहुत समय के बाद आपसे मिला है और गाड़ी में आपके बाजू में बैठा है, गाड़ी चलाते हुए आपको रोड पर ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, सिग्नल्स का भी ध्यान रखना है और गंतव्य पर भी समय पर पहुंचना है, लेकिन सब कुछ ध्यान से करते हुए भी आप अपने साथ बैठे हुए उस फ्रेंड के साथ भी तो बात करते हैं ना, आपका ध्यान उसकी तरफ भी तो सहज रहता ही है। ठीक ऐसे ही हम सब भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर को मैं अलग अलग संबंधों के साथ रिश्तों के साथ याद करूं, He's my best friend, ऐसा फ्रेंड जो हर मेरे मन की बातों को सुनता है, दूसरों के पास तो टाइम भी नहीं है, वो सुनकर मन के दर्द को ऐसा हर लेता है मानो जैसे कभी था ही नहीं, और कैसे भी बड़ी उलझन को पल में सुलझा देता है। ऐसा फ्रेंड वो आपके साथ है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आपसे दोस्ती करने के लिए, उनका हाथ पकड़ ले। अब वो और आप हर कार्य में साथी हैं, कार्य करते हुए बात करें, कार्य भी तो उसी ने दिया है, हर चीज जो मेरे पास है सब उसी का दिया हुआ है, तो हर वस्तु को हर चीज का उपयोग करते क्यों नहीं वो याद आ सकता है? याद करना क्यों मुश्किल होगा? शुरुआत कीजिए भोजन करते समय, जब हम खाना खाएंगे आज से तो याद रखेंगे खाना खाते समय पहले हम उसे खिलाए स्वीकार कराए, हे ईश्वर हे मेरे पिता आपने ही दिया है ये सब मुझे, पहले आप स्वीकार करें, आप खिला रहे हो मुझे। भोजन पर याद करना बहुत आवश्यक है, एक एक कण जो मेरे अंदर जा रहा है न केवल उस भोजन का पोषण मेरे खून में मिल जाएगा पर ईश्वर की शक्ति उसमें मिलकर वो भोजन प्रसाद बनकर मेरे मन को और तन को अद्भुत शक्ति देकर चली जाएगी। आज के समय के अनुसार हम देखते हैं कि धीरे धीरे अनाज और सब्जियां मिलना भी मुश्किल होते जाएंगे, प्रकृति की हलचल कुछ इस प्रकार से बढ़ती जाएगी कि कोई भी वस्तु उपलब्ध होना बहुत कठिन होता जाएगा। ऐसे समय में ईश्वर को स्वीकार कराया हुआ उसकी याद में खाया हुआ भोजन मानो मन के अंदर ये स्मृति रहती है कि हमें ईश्वर खिला रहे हैं, तो सच ईश्वर भी प्रसन्न होकर कहते हैं तथास्तु, अंत तक मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। इसीलिए ईश्वर की याद में भोजन आज से ही हम प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे हर कार्य करते हुए हमारी आदत सहज बनती जाएगी, तो इस तरह अंदर की स्वच्छता शुद्धता मेरी अपनी सत्य पहचान और ईश्वर पिता का साथ, ये मेरे अंदर सच्ची खुशी का आधार है। गुण और शक्तियां जो सहज अंदर भरती चली जाती है, ये मुझे सच्चा सोना बना देती है, रियल गोल्ड। नहीं तो आज तक अंदर हम कुछ भी थे, ऊपर से एक पॉलिश करके शायद हम अपने आप को सोना तो नहीं कहला सकते थे ना, लेकिन अंदर तक वो रियलिटी के साथ हम रियल गोल्ड बन जाते हैं। और वास्तव में रियल गोल्ड हम आत्माएं ही, जब ये दुनिया परिवर्तित होगी तब उस गोल्डन एज में जाने के लिए हम अधिकारी बन जाते हैं। तो आप सभी को रियल गोल्ड बनने की बहुत बहुत मुबारक है। तो चलिए अंत में हम कुछ पल के लिए चलते हैं, अपनी उस असली स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अपने ऊपर आज तक चढ़ाए हुए लगाए हुए अनेक लेबल्स को, पुरानी नकली पहचान को हटा देंगे और अपने नवीन ड्रेस, नई असली पहचान में स्थित होकर शक्तिशाली बनेंगे। चलिए कुछ पल के लिए पीठ को सीधी करके बैठ जाएंगे, मन एकाग्र, और जो विजुअलाइजेशन हम आपको दे रहे हैं अपने बुद्धि रूपी नेत्र से, उसे वैसा ही विजुअलाइज करते जाएंगे। एकाग्र हो, बैठ जाए ऐसे जैसे आप एक बड़े मैदान में अकेले एकांत में बैठे हो कुर्सी पर। आपके चारों ओर एक सर्कल में एक छोटी सी हाइट की दीवार उठकर खड़ी हो जाती है आपसे थोड़े दूरी पर। और अब उस दीवार में से कुछ हुक्स, हैंगर्स थोड़े थोड़े दूरी पर आपकी तरफ निकल कर बाहर की ओर आए हैं। आप कुर्सी पर बैठे हुए अपने अंदर की दुनिया में स्थित हो, सोच रहे हो, मैं जब आया था तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहां ही मुझे मिलता गया। जैसा मुझे रोल प्ले करना था वैसा मुझे मिलता गया। और जिस दिन मैं यहां से जाऊंगा, मुझे यहां की एक एक चीज यहां ही छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। अब अपने अंदर लगाए हुए एक एक लेबल्स को, अपने नाम, अपने पद, अपने रोल के अलग अलग लेबल्स को मैं ध्यान से देख रहा हूं। ये भी तो मुझे यहां मिले हैं। इन्हें भी मुझे छोड़ कर ही जाना होगा। ये एक भी मेरे नहीं है। धीरे धीरे इन एक एक लेबल्स को निकाल कर अपने अंदर से निकाल उस हुक पर टांगते जाए जो आपके चारों ओर है। रोल पर बनाई अपनी पहचान, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा किया है मैंने, अलग अलग अपनी सारी अपने प्रति स्मृतियां निकाल निकाल कर एक एक हुक पर टांगते जा रही हूं। ये मेरा नहीं है, मुझे मिला था, ईश्वर ने दिया था। और जैसे जैसे मैं ये निकालते जा रही हूं, अंदर से हल्की होती जा रही हूं। उन सब का अहम समाप्त होता जा रहा है। और अब रह जाती हूं मैं अंदर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट। ये शरीर भी यहां ही मिला था, इससे भी छोड़ कर जाना है। जब इससे भी हटा देती हूं तो रह जाती हूं एक चमकती हुई प्रकाश। अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड, अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड। प्योरिटी का एहसास अपने सहन में भर ले। अब मुझे हर कार्य करते अपनी इस नई पहचान को स्मृति में रखना है। आई एम अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड। ओ शांत।
Thanks, Sister Prachi. It was truly a journey to bliss, a journey to silence. Truly, your insights will be a part of lifestyle, a part of routine. Journey to joy encompasses certain belief systems in personal or professional life. Now, let's listen to Sister Sushmita Roy General Manager Personnel from Durgapur Steel Plant. She'll explain us how spiritual wisdom plays a role.
Om Shanti. Enhancing the quality of life. Well, the topic is indeed very beautiful, and I am happy and fortunate to be sharing my thoughts. When I joined the Brahma Kumaris, the first lesson that I learned was that when I change, the world changes. Swaparivartan se vishwaparivartan. This opened my eyes and changed my way of thinking. So long, I was looking at others, finding their faults, blaming them, and wanting them to become like me, like the way I thought. But now I knew that when I look at others, I have to see the good qualities in them and imbibe the good qualities in them. When I see in the good in them, then even the negative qualities, they are transformed and they become good. So I tried it on one of my colleagues and the result was amazing. He was a person on whom everybody used to look down upon and find his faults. So when he came into my team, I found the strength in him. I found that he was soft-spoken, that he would maintain a high degree of confidentiality, that his English was very good. And these were the points that I went on stressing again and again, and especially point out these points and praise him in front of other people. So what happened was that the transformation started coming in him, and gradually we all saw how he was transformed into a beautiful soul. So this is only one of the teachings that I have shared, but it has been a lovely experience and a long journey. And of course, I am not perfect today, but my aim is towards that perfection. Thank you very much. Stay safe, be happy, and spread happiness around you. Thank you. Om Shanti.
Thank you, Sushmita Ben. It's a great feeling to learn your practical approach. We will continue the journey, and tomorrow we will meet at 10 a.m. for an interesting and relevant session, Cherishing Life's True Treasures, by Brahma Kumar Piyush from Delhi. Let's conclude by words of wisdom from Dadi Janki Ji on silence. Thank you. Om Shanti.
मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो हम अनुभव से कहते हूँ शांति तब आएंगी जब साइलेंस में जाएंगे, मन अंदर डीप जाएंगे, अंतर जाना माना सब बाहर की बातों को समेट के समा के मैं कौन हूँ अंदर जाओ, अंदर डीप जाओ, जितना अंदर जाएंगे इतना डीप जाओ, जब तक शांति तक, सच्ची शांति तक आत्मा अंदर से नहीं अनुभव किया है तब तक जल्दी कोई संकल्प की उत्पत्ति मत करो। आदत पर गई है देहमान के कारण, मन कर्मेंद्रों के वश होने के कारण बहुत भटकता है, चलायमान हो जाता है, दुलायमान हो जाता है, बुद्धि फिर अच्छा राइट रॉन्ग सच झूठ पाप पुण्य समझते हुए भी बुद्धि ठीक काम नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा बाप इशारा करते हैं, बच्चे मन को भटकना से छुड़ाने के लिए, बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए अंदर जाओ, आवाज से परे जाओ। भले कान खुले है आंख खुली है पर जी चाहता है अंतर्मुखी होकर के एकाग्रता की शक्ति से शांति मेरा स्वधर्म है, शांति का सागर परमात्मा है तो लिंक परमात्मा से जुड़ जाती है। शांति आत्मा का अंदर जाने से अनुभव ये हुआ मेरा स्व का धर्म ही शांत है। फिर उसमें ये भी अनुभव होता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सत्यता क्या है तो सच्चाई और शांति। साइलेंस में जाने से जो खो बैठे हैं वो वापस अनुभव होती है। साइलेंस में जाना पहले तो सब दुनिया के आवाजों से निगाहों से परे हो जाना, आवाजों से परे ले जाने वाला एक ईश्वर है। तो अंदर जब आत्मा शांत का अनुभव करती है तो परमात्मा से कनेक्शन जुटने से एक तरफ लाइट बने दूसरी माइट मिल गई। लाइट एक है रोशनी, दूसरा हल्कापन, बॉडी जैसी स्थिति बन जाती है। बॉडी कॉन्शियस में भारी बोन है, जब बॉडी लेस स्थिति बनती शरीर से डिटैच हो जाते ईश्वर से कनेक्शन जुटने से जैसे लाइट बने माइट मिली, इतना प्योरिटी का पीस का अनुभव आत्मा में हो जाता तो प्योरिटी पीस लव हैप्पीनेस पावर साइलेंस से ऐसे जैसे खोया हुआ खजाना फिर से मिलता है या परमात्मा बाप से कनेक्शन होने से जैसे साइंस ने कमाल कर दिखाई है। तो साइंस है जब पावर हाउस से कनेक्शन है तो सब कुछ मिलता है, जैसे ऊपर वाले से आलमाइटी से कनेक्शन से जो हम इंसान की आत्मा को शांति की शक्ति चाहिए वो शक्ति स्वयं ही शांत रहने का नेचुरल स्वभाव बन जाता है। फिर साइलेंस पावर से अपने ऊपर भी जीत और साइलेंस पावर से दुनिया में सबके साथ संबंध में आते हुए भी सफलता सदाई ऐसे साथ देती। फिर अंदर से आवाज निकलेगा परमात्मा की दीवी साइलेंस की शक्ति काम कर रही है। ओम शांति।
Awakening to a new way of life.